ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 5 जुलाई 2026 के लिए है। विषय: परमेश्वर। स्वर्णपथ, भजन संहिता। ईश्वर की करुणा तो अनंत है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्ताकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वास से युगे हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे सुर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेकित का उद्धार करता है और वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से, भजन संहिता। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। निर्गमन। मूसा अपने ससुर यत्रु नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह छुपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वो मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरुण कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा تب وہ اس کے ہاتھ میں پھر لاٹھی بن گئی۔ وہ لوگ پرتیتی کریں کہ تمہارے پتروں کے پرمیشور ارتھات ابراہیم کے پرمیشور، اسحاق کے پرمیشور اور یعقوب کے پرمیشور یہوہ نے تجھ کو درشن دیا ہے۔ پھر یہوہ نے اس سے یہ بھی کہا کہ اپنا ہاتھ چھاتی پر رکھ کر ڈھانپ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ چھاتی پر رکھ کر ڈھانپ لیا۔ پھر جب اس نے نکالا کیا دیکھا کہ اس کا ہاتھ کوڑ کے کارن برف کے سمان سفید ہو گیا ہے۔ تب اس نے کہا اپنا ہاتھ چھاتی پر رکھ کر پھر سے ڈھانپ، اور اس نے اپنا ہاتھ چھاتی پر رکھ کر ڈھانپ لیا۔ اور جب اس نے اس کو چھاتی پر سے نکالا تب کیا دیکھتا ہے کہ وہ پھر سارے دیہ کے سمان ہو گیا ہے۔ تب یہوہ نے کہا یدی وہ تیری بات کی پرتیتی نہ کریں اور پہلے چن کو نہ مانے تو دوسرے چن کی پرتیتی کریں گے۔ موسیٰ نے یہوہ سے کہا ہے میرے پربھو، میرے بولنے میں نپن نہیں، نہ تو پہلے تھا اور نہ تب سے کہ تو اپنے داس سے باتیں کرنے لگا، میں تو منہ اور جیب کا بھدا ہوں۔ یہوہ نے اس سے کہا منوشے کا منہ کس نے بنایا، اور منوشے کو گونگا یا بہرا یا دیکھنے والا یا اندھا؟ مجھ یہوہ کو چھوڑ کون بناتا ہے؟ اب جب میں تیرے مکھ کے سنگ ہو کر جو تجھ کو کہنا ہوگا وہ تجھے چکھلاتا جاؤں گا۔ عبرانیوں، اب وشواس آشا کی ہوئی واسطوں کا نشچے اور اندیکھی واسطوں کا پرمان ہے، کیونکہ اسی کے وشے میں پراچینیوں کی اچھی گواہی دی گئی۔ وشواس ہی سے ہم جان جاتے ہیں کہ ساری سرشٹی کی رچنا پرمیشور کے وچن دوارہ ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ دیکھی ہوئی واسطوں سے بنا ہے، اور وشواس کے بنا اسے پرسن کرنا انہونا ہے، کیونکہ پرمیشور کے پاس آنے والے کو وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے، اور اپنے کھوجنے والوں کو پرتیفل دیتا ہے۔ وشواس ہی سے موسیٰ نے سیانا ہو کر فرعون کی بیٹی کا پتر کہلانے سے انکار کیا، اسی لیے کہ اسے پاپ میں تھوڑے دن کے سکھ بھوگنے سے پرمیشور کے لوگوں کے ساتھ دکھ بھوگنا اور اتم لگا، اور مسیح کے کارن آنندت ہونے کو مصر کے بھنڈار سے بڑا دھن سمجھا، کیونکہ اس کی آنکھیں پھل پانے کی اور لگی تھیں۔ وشواس ہی سے راجا کے کرودھ سے نہ ڈر کر اس نے مصر کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اندیکھی کو مانو دیکھتا ہوا دھیرڑ رہا۔ اب اور کیا کہوں، کیونکہ سمے نہیں رہا کہ جدون کا اور باراک کا اور سمسون کا اور افتاح کا اور داؤد کا اور سیموئل کا اور بھوشیہ ادوکتاؤں کا ورنن کروں۔ انہوں نے وشواس ہی کے دوارا راجے جیتے، دھام کے کام کیے، پرتگیا کی ہوئی واسطویں پراپت کیں، سنہوں کے منہ بند کیے، آگ کی جوالا کو ٹھنڈا کیا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، نربلتا میں بلونت ہوئے، لڑائی میں ویر نکلے، ودیشیوں کی فوجوں کو مار بھگایا۔ بھجن سنہتا۔ ہے میرے پران، تو کیوں گرا جاتا ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں ویاکل ہے؟ پرمیشور پر بھروسہ رکھ، کیونکہ وہ میرے مکھ کی چمک اور میرا پرمیشور ہے، میں پھر اس کا دھنیواد کروں گا۔ یہوہ اپنی شکتی اور کرونا پرگت کرے گا، اور رات کو بھی میں اس کے گیت گاؤں گا اور اپنے جیون داتا ایشور سے پرارتھنا کروں گا۔ بھجن سنہتا۔ اسرائیل کا پرمیشور یہوہ انادیکال سے انت کال تک دھنے ہے، اور ساری پرجا کہے آمین۔ یہوہ کی ستوتی کرو۔ اب میں میری بیکر ایڈی دوارا کرسچن سائنس کی کتاب وگیان اور سواست شاستروں کی کنجی کے ساتھ کے سہا سمبندھی انش پڑھوں گا۔ وگیان اور سواست۔ پرمیشور، مہان میں ہوں، سرو وگیان، سرو درشن، سرو کاویے، سرو پریے اور شاشوت، سدھانت، من، انت، آتما، جیون، ستے، پریم، سبھی پدھارت، بدھی۔ سیکسن اور بیس انے بھاشاؤں میں بھگوان کے لیے شبد اچھا ہے۔ پوتر شاستر نے وہ سب گھوشت کیا جو اس نے سویم کے لیے اچھا مانا، جیسے سدھانت میں اچھا اور وچار میں۔ اس لیے ادھیاتمک بھرمانڈ اچھا ہے اور بھگوان کو درشاتا ہے جیسے وہ ہے۔ یہ دھارنا کہ برائی اور بھلائی دونوں واستوک ہیں بھاوتک ارتھوں کا بھرم ہے، جسے وگیان نے سماپت کر دیا ہے۔ बुराई कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मन और ना ही शक्ति है। दिव्य तत्व मीमांसा की मूल बातें नीचे दिए गए चार मेरे लिए स्वयं स्पष्ट साफ प्रस्तावों में बताई गई हैं। अगर उसे उल्टा भी किया जाए तो भी ये प्रस्ताव कठान और प्रमाण में एक जैसे पाए जाएंगे। गणित अनुसार जो सत्य के साथ सटीक रिश्ता दिखाता है। डी क्विंसी का कहना है कि गणित का कोई आधार नहीं है जो पूरी तरह से तत्विक नहीं है। एक, ईश्वर सर्वव्यापी है। दो, ईश्वर अच्छा है, ईश्वर मन है। तीन, ईश्वर आत्मा सब कुछ होने का कारण कुछ भी पदार्थ नहीं है। चार, जीवन ईश्वर सर्वशक्तिमान अच्छाई, मृत्यु बुराई, पाप रोग को निकालें। रोग पाप बुराई मृत्यु अच्छाई सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवन को नकारते हैं। प्रस्ताव चार में इनमें से कौन सा इनकार सही है? दोनों सच नहीं है और ना ही हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार मुझे लगता है कि परमेश्वर सच्चा है, लेकिन हर मनुष्य झूठा है। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर स्मारित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, ना केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। मूसा ने एक राष्ट्र को पदार्थ की बजाय आत्मा में ईश्वर की पूजा करने के लिए आगे बढ़ाया और अमर मन द्वारा प्रदान की जाने वाली भावे मानवीय क्षमताओं का वर्णन किया। इब्रानी शरीयत देने वाला भाषण की धीमी गठी लोगों को यह समझने में निराश करता है जो उसे बताया गया था। जब अपने डंडे को गिराने के लिए प्राज्ञा ने नेतृत्व किया तो उसने देखा कि यह सांप बन गया, तो उसके आगे मूसा भाग निकला, लेकिन ज्ञान ने उसे वापस आकर सांप को पकड़ने के लिए मजबूर किया और तब मूसा का भय दूर हो गया। इस घटना में विज्ञान की वास्तविकता दिखी गई थी। पदार्थ को केवल एक विश्वास के रूप में दिखाया गया था। ज्ञान की बात के मुताबिक सांप दुष्ट दिव्य विज्ञान को समझने के माध्यम से नष्ट हो गया था और ये सबूत एक कर्मचारी बना जिसके आगे झुकना था। मूसा के भरम ने उसे खतरे में डालने वाली अपनी शक्ति खो दी। जब उसने पाया कि जो कुछ उसने देखा था वो स्पष्ट रूप से वास्तव में था, लेकिन ये नश्वर विश्वास का एक शरण था। ये वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया था कि कुष्ठ रोग नश्वर मन का निर्माण था और ना ही पदार्थ की स्थिति। जब मूसा ने पहली बार अपनी छाती पर हाथ रखा और वो भयानक बीमारी के साथ सफेद हो गया और वर्तमान में एक सरल प्रक्रिया द्वारा अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए अपने हाथ को बहाल कर लिया। ईश्वरी विज्ञान में इस प्रमाण से ईश्वर ने मूसा का भय कम कर दिया था और उसके भीतर की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ बन गई, जिसने कहा, यदि वो तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। और इसलिए ये आने वाली शताब्दियों में था जब यीशु द्वारा विज्ञान का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसने अपने छात्रों को पानी को मैं में बदलते हुए मन की शक्ति को दिखाया और उनको सिखाया कि कैसे सांपों को संभाला जाए, बीमारों को ठीक किया जाए और दुष्ट आत्मा को निकाला जाए, मन की सर्वोच्चता के प्रमाण में। अधिक जानने के लिए हमें जो पहले से जानते हैं उससे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्य को समझने पर प्रदर्शित किया जा सकता है और उस अच्छाई को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक ये प्रदर्शित ना हो जाए। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें तो हम बहुतों के अधिकारी बनाए जाएंगे। कभी कभी हमें ये विश्वास दिलाया दिया जाता है कि अंधकार भी उतना ही वास्तविक है जितना के प्रकाश, लेकिन विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का एक नश्वर भाव है, जिसके आने पर अंधकार वास्तविकता का आभास खो देता है। तो पाप और दुख, बीमारी और मृत्यु जीवन ईश्वर की अनुमानित अनुपस्थिति हैं और सत्य और प्रेम के सामने त्रुटि के परिणत के रूप में भागते हैं। इस भ्रम को सहने के लिए तैयार ना रहें कि आप बीमार हैं या आपके शरीर में कोई बीमारी विकसित हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे आप इस आधार पर पाप के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं कि पाप की अपनी आवश्यकताएं हैं। कुछ कथातथित कानूनों का उल्लंघन करते समय आप कहते हैं कि खतरा है, ये डर खतरा है और ये शारीरिक प्रभावों को प्रेरित करता है। हम वास्तव में एक नैतिक या आध्यात्मिक कानून को छोड़कर कुछ भी तोड़ने से पीड़ित नहीं हो सकते। नश्वर विश्वास के तथाकथित नियम आत्मा को अमर होने की समझ से नष्ट हो जाते हैं और वो नश्वर मन समय काल और प्रकार के रोग का विधान नहीं कर सकता जिसके साथ नश्वर मर जाते हैं। परमेश्वर कानून अविद है लेकिन वो भयानक संहिताओं का लेखक नहीं है। अनंत जीवन और प्रेम में कोई बीमारी पाप मृत्यु नहीं है और शास्त्र घोषणा करते हैं कि हम अनंत ईश्वर में रहते हैं चलते हैं और वो हमारे पास रहता है। सत्य में त्रुटि की कोई चेतना नहीं है, प्रेम में घृणा का भाव नहीं होता, जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। सत्य जीवन और प्रेम अपने से बिन हर चीज के विनाश का नियम है क्योंकि वो ईश्वर के अलावा कुछ भी घोषित नहीं करते हैं। बीमारी पाप और मृत्यु जीवन का फल नहीं है, वो ऐसे रोग हैं जो सत्य को नष्ट कर देते हैं, पूर्णता अपूर्णता को चेतन नहीं करती है। भगवान जितना अच्छा है और सभी का स्रोत है वो नैतिक या शारीरिक विकृति नहीं करता है, लेकिन इस तरह की विकृति वास्तविक नहीं है लेकिन भ्रम है, त्रुटि का मिथ्या भ्रम। दिव्य विज्ञान इन भव्य तत्वों का खुलासा करता है। हमारे लिए कौन सा पदार्थ होना चाहिए? गलती से बदलते हुए परिवर्तनशील और नश्वर या बैरोकातिक अपरिवर्तनीय और अमर चीज? नए नियम का एक लेखक स्पष्ट रूप से विश्वास का वर्णन करता है, मन का एक गुण आशा की हुई वास्तुओं के सार के रूप में। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भावतिक दमन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से हमें रोक नहीं सकता। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।